अन्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैतन्य चरितामृत के 16वें सत्र में। हम लोग चर्चा प्रारंभ किए थे मध्य लीला से, और आपको याद है कि हम लोग किस प्रकार से सारे अध्यायों का रोज थोड़ा थोड़ा अवलोकन कर लेते हैं। और मैं हमेशा इसके ऊपर जोर देता हूँ कि हमें जो अनुक्रमणिका है वो यदि ठीक से हमारे दिमाग में बैठ जाती है तो फिर हम लोग उस ग्रंथ का अध्ययन और अच्छे से चाव से रुचि लेकर प्रेम से बुद्धि से जो है वो कर सकते हैं। आपको कोई कोई कहता है कि ये थोड़ा मुश्किल जाता है, हमें तनाव आता है हमारे दिमाग के ऊपर। तो यदि हम लोग देखें कि बचपन में हम क्या किया करते थे, पहाड़े याद किया करते थे। जैसे मैं अभी मराठी मीडियम से हूँ तो उसमें हम लोग पहाड़े याद करते थे, जैसे तीन का पहाड़ा है, तीन एक तीन तीन दुनिया सहा तीन त्रिक नौ तीन चौक बारह तीन पाँच पंद्रह तीन से अठारह तीन सत्तर इक्कीस तीन आठ चौबीस तीन नौ सत्ताईस तीन दहाई तीस। तो इस प्रकार से तीन से लेकर तीस तक वो पहाड़ा चलता है और आगे चलता है। तो हमारी टीचर, मुझे उनका एक बार ऐसा गुस्सा आया, उन्होंने वर्टिकल पहाड़े याद रखने के लिए तो कहा ही था, उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल भी पहाड़े याद रखने के है, तीन त्रिक नौ चार त्रिक बारह पांच त्रिक पंद्रह सात त्रिक अठारह सात त्रिक इक्कीस आठ त्रिक चौबीस नौ त्रिक सत्ताईस दह त्रिक तीस। तो ऐसा पूरा हॉरिजॉन्टल, सब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल भी आना चाहिए पहाड़ा, हॉरिजॉन्टल भी आना चाहिए। तो हम लोग परेशान हो जाते थे इतना सब याद रखने का, लेकिन उस समय कर करके वो इतने याद रह गए। फिर उसके पश्चात पूरा गणित विषय आसान हो जाता है यदि आपके पहाड़े याद है तो अच्छे से। तो उस प्रकार से हम लोग वो चीज़ें करते हैं तो हमें ये करने के लिए इतना मुश्किल नहीं लगना चाहिए। और इसको याद रखेंगे तो बाकी सारी दूसरी चीज़ों को याद रखते हैं उसको ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कई कल भक्त बोल रहे थे कि इतना जो हमने इतने सारे वैष्णव के नाम लिए कल, वो कैसे याद रखे जाए। तो मैं कहा कि इसको याद रखने की अलग से आवश्यकता नहीं है, आप उसके अंदर प्रवेश कर जाओ, आप सब समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है। जैसे मुझे याद है मेरे कुछ मित्र थे जब मैं कॉलेज में था, उस समय वो जो इनका फेवरेट हीरो है, उस फेवरेट हीरो ने कौन से फिल्म में काम किया था, उस फिल्म का नाम, उसमें जो रोल अदा किया हीरो ने उसका नाम उस फिल्म में। तो इस प्रकार से वो सब याद रहता है लोगों को, या वो उसको अलग से याद नहीं किया जाता कि इस फिल्म में इस मेरे एक्टर ने ये रोल अदा किया था, उसमें उसका नाम ये था। तो इस प्रकार से सब याद रखते हैं, कौन से क्रिकेट मैच में कौन से प्लेयर ने कितने स्कोर किए थे, ये भी याद रखते हैं लोग। तो उसको याद रखने से अच्छा है वो मृत्यु के समय हमारे काम में आने वाला नहीं है। अल्टीमेटली हमें क्या काम में आने वाला है, वो एक तो भगवान का नाम, और उस प्रकार से यदि मुझे याद है जब हम महाविष्णु महाराज, परम पूज्य महाविष्णु महाराज जब नासिक में रहा करते थे, उनसे मिलने के लिए कहे गए गए थे, तो थोड़े बीमार थे तो वो बेड के ऊपर लेटे हुए थे, हम सब मिलने गए, महाराज आपकी तबीयत कैसी है? बोले तबीयत बाद में, बेड पहले बैठ जाओ, मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ, उसको सुनो। तो उन्होंने एक श्लोक हमसे पहले याद कराया और बाद में बता कि मेरी सेहत अच्छी है, ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से चले गए। तो इस प्रकार से हमें क्या याद रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए उसके बारे में पहले सोचना होगा। तो जो मैं अनुक्रमिक का बता रहा हूँ, और एक चीज़ मैं आपको बताना रह गया कि जो हमने चर्चा की थी, एक होमवर्क दिया था आपको कि खुद के अनुभवों से द्वारा जो आपको कुछ शिक्षाएं जो हम इसमें से देख सकते हैं वो लिखे यदि तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके लिए एक रेफरेंस के लिए, जब मैं श्रीमद् भागवत भी जब अध्ययन कर रहा था तो मुझे एक श्लोक मिला भागवत में, जब शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछते हैं सुध गोस्वामी से, और उनका जवाब देने से पहले सुध गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को वंदना करते हुए श्लोक कहते हैं, यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप अतिथि तीर्षताम तमोन्दम संसारिणाम करुणायाह पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुम उपयामी गुरु मुनीनाम तम व्यास सोनुम। उस व्यासदेव के पुत्र, उनको मैं गुरु बोल के प्रणाम करता हूँ। और वो शुरुआत करते हैं यह स्व अनुभव, जिन्होंने यह स्वानुभावम अखिलम श्रुति सारमेकम, जो श्रुति जो सब कुछ सुन रखा है उन्होंने, उसके साथ साथ क्या किया है, स्व अनुभव, अपना खुद का अनुभव उसमें जुड़ा हुआ है और वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से हमें जो हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें से हम लोग हमारे स्वयं के आचरण के लिए क्या किन किन शिक्षाओं को निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, पालन कर सकते हैं, वो हमें लेना चाहिए। क्योंकि मैं आ, आ, इन सत्रों में रेडीमेड हम लोग इस प्रकार से शिक्षाएं नहीं ले रहे यहाँ पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे ओवरव्यू स्टडी है, और जब रेडीमेड मिलता है तो हम वो स्वानुभव नहीं रहता। तो हम लोग जब खुद उसमें से ढूंढ के निकालते हैं तो हमारा अध्ययन भी गहराई से हो जाता है और जो पालन करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है वो लंबे समय तक टिकी रहती है। तो हमने मध्य लीला प्रारंभ किया है, उसमें पहले दो अध्याय है पूर्ण शेष लीला का सारांश, तीसरा अध्याय महाप्रभु अद्वैताचार्य इनके घर, चौथा अध्याय माधवेंद्रपुरी और खीरचोर गोपीनाथ इनका वर्णन, पांचवा अध्याय साक्षी गोपाल इनका कथा वृत्तांत, महाप्रभु जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए, जगन्नाथपुरी रास्ते में ये दो मंदिर आए थे, छठा अध्याय जगन्नाथपुरी में महाप्रभु का पहुंचना, सर्वम भट्टाचार्य इनका उद्धार, सातवां अध्याय महाप्रभु दक्षिण भ्रमण यात्रा प्रारंभ कर देते हैं और वासुदेव इसका उद्धार, कुर्म ब्राह्मण का उद्धार, आठवें अध्याय में रामानंद राय इनके साथ संवाद, नौवें अध्याय में संपूर्ण दक्षिण भारत भ्रमण और जगन्नाथपुरी पुनः लौटना, और कल हमने दो अध्याय लिए थे, दसवां और ग्यारहवां। दसवां अध्याय का शीर्षक था भक्तों का पुनः मिलन जगन्नाथपुरी में महाप्रभु। तो दसवें अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से अलग अलग भक्त महाप्रभु से मिलते हैं, स्वरूप दामोदर वहां पर मिलते हैं, परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, गोविंद महाप्रभु के सेवक के रूप में वहां पर आते हैं और महाप्रभु उनकी सेवा स्वीकार कर देते हैं। और जिस प्रकार से कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं, जैसे मानो अनाज है, अनाज सूख रहा है धूप के कारण, उसी प्रकार से ये सारे भक्त महाप्रभु के विरह के कारण सूख रहे थे, मानो उनकी जान चली जा रही है, और उसी समय जैसे यदि बादल वर्षा कर दे तो सारा अनाज बच जाता है, उसी प्रकार से महाप्रभु की कृपा इन सबके ऊपर हुई और सबके जीवन महाप्रभु ने बचा लिए। जिस प्रकार से नदी समुद्र की तरफ जाती है, उसी प्रकार से सारे भक्त महाप्रभु को मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। ग्यारहवें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि बंगाल से सारे भक्त आ रहे हैं और बंगाल से फिर अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, शिवानंद सेन, हरिदास ठाकुर, ये सब आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। और हमने देखा किस प्रकार से राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु से मिलने की अभिलाषा रखता है लेकिन महाप्रभु मना कर देते हैं, इसलिए सारे भक्तों का आगमन छत के ऊपर से ही गोपीनाथ आचार्य, सर्वम भट्टाचार्य और राजा प्रताप रुद्र देखते हैं। और सब लोगों के लगभग 200 जो भक्त आए थे उनकी रहने की प्रसाद की व्यवस्था राजा करा देते हैं। तो सारे भक्त वहां पर जो है वो रुके हुए हैं महाप्रभु के घर, महाप्रभु काशी मिश्रा के घर पे रुके हुए हैं, और हमने देखा सारे भक्तों की प्रसाद की व्यवस्था का भार महाप्रभु ने वाणीनाथ इनको दिया था, और रहने की व्यवस्था जो है वो गोपीनाथ आचार्य और काशी मिश्र ये संभाल रहे थे। आपको याद होगा ये गोपीनाथ आचार्य का हम लोग नाम लेते हैं, ये छठे अध्याय में हमने जब सार्वभौम भट्टाचार्य इनका उद्धार हुआ तब उनका संबंध बताया था। गोपीनाथ आचार्य इनकी पत्नी नहीं, गोपीनाथ आचार्य इनकी बहन सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी थी, बहनों ही ऐसा जीजा साला का इनका संबंध था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और फिर महाप्रभु इस प्रकार से रुके, और 11वां अध्याय जिसका शीर्षक है बेड़ा संकीर्तन, तो सब भक्तों ने प्रसाद पाया और सारे भक्त जगन्नाथ मंदिर में जाके ऐसा धुआंधार कीर्तन वहां पर होता है, चार कीर्तन पार्टियां बनाई जाती है, और हम लोगों ने देखा किस प्रकार से सारा नृत्य और कीर्तन होता है, मानो आकाश तक उसकी ध्वनि पहुंच गई है, ऐसा प्रेम संकीर्तन सारे लोगों ने वहां पर पहली बार ही देखा था। महानृत्य महाप्रेम महासंकीर्तन देखी प्रेमावेश भासे नीलाचल जन, सारे नीलाचल जन नीलाचल वासी पहली बार महानृत्य महाप्रेम और महासंकीर्तन वहां पर देख रहे थे, सबको पहली बार देखने के लिए मिल रहा था। ये जगन्नाथपुरी में हो रहा है कीर्तन, राधा और कृष्ण इनका जब रास नृत्य होता था तब उसमें भाग लेना तो छोड़ दीजिए, उसे देखने की भी किसी को अनुमति नहीं थी, वही रास नृत्य का प्रकटीकरण अभी महाप्रभु स्वयं नृत्य यहाँ पर करके सारे लोगों को इसमें आमंत्रित कर रहे थे और उसका अनुभव प्रदान कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो है वो हमारा 11वां अध्याय हो जाता है, और हम लोग देखे कि किस प्रकार से स्नान यात्रा का वो महोत्सव होता है, और महाप्रभु जगन्नाथ जी से विरह अनुभव कर रहे हैं। उसके पश्चात जगन्नाथपुरी में महोत्सव आता है, उसका नाम है गुंडीचा मंदिर मार्जन, और वो अध्याय 12 आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो इस प्रकार से पूर्वे दक्षिण हैले प्रभु यबे आइला तार मिलिते गजपति उत्कंठित होइला। जब महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए गए थे उसी समय हमने देखा कि राजा प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, तो जब राजा प्रताप रुद्र कटक में जो उनकी राजधानी थी वहां पर थे, तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य इनसे एक पत्र लिखा था, और पत्र में लिखा था कि मुझे महाप्रभु से मिलाना के लिए कुछ योजना बनाइए, और सार्वभौम भट्टाचार्य ने उस पत्र के जवाब में लिखा था कि महाप्रभु बिल्कुल मना कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि वो तो ठहरे विरक्त सन्यासी और आप है राजा एक बड़े पॉलिटिशियन। उससे राजा प्रताप रुद्र का मन खिन्न हो जाता है, और राजा प्रताप रुद्र दूसरा पत्र लिखता है सार्वभौम भट्टाचार्य से पुनः विनती करते हुए कि आप ये पत्र महाप्रभु को दिखाइए, और ये न के न प्रकारे न मुझे महाप्रभु से मिलने की योजना बनाइए। सार्वभौम भट्टाचार्य अभी उनका भी मन खिन्न हो जाता है कि कितने राजा उतावले हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। सार्वभौम भट्टाचार्य सारे भक्तों के पास जाते हैं और वो चिट्ठी दिखाते हैं कि राजा कितने उत्कंठित है देखिए मिलने के लिए। सारे भक्त कहते हैं चलो हम तुरंत जाते हैं और महाप्रभु से मिलने के लिए जाएंगे, और महाप्रभु को कहेंगे कि आप राजा से मिलिए। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य पहले भी महाप्रभु से मिले थे, तो महाप्रभु ने कहा था कि यदि आप पुनः मेरे पास आके निवेदन करेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये सब भक्तों को खबर थी, इसलिए सारे भक्त सोचे कि महाप्रभु को हम ये नहीं कहेंगे कि आप राजा से मिलिए, महाप्रभु से हम केवल इतना कहते जाएंगे कि राजा का गुणगान करते जाएंगे महाप्रभु के पास जाके। तो इस प्रकार से सारे निश्चय कर लेते हैं अभी हम जाके महाप्रभु के पास उनको मिलेंगे और केवल राजा का गुणगान करेंगे। सारे भक्त चले जाते हैं महाप्रभु के सामने मिलने के लिए, लेकिन जब महाप्रभु को देखते हैं सारे भक्त चुप, छुड़ी चुप, एक भी कोई बात नहीं कर रहा है। महाप्रभु कहते हैं अरे आप सब लोग मुझे मिलने के लिए आए, कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे आप लोग। तो फिर उसमें नित्यानंद प्रभु बोल पड़ते हैं कि महाप्रभु हम लोग तो कुछ निवेदन ऐसा करने के लिए आए हैं, लेकिन हम सब लोग भयभीत है कि आप गुस्सा न हो जाए। राजा प्रताप रुद्र बहुत ही उत्कंठित है आपसे मिलने के लिए, और वो सोच रहे कि केवल यदि चेहरे का भी दर्शन हो जाए महाप्रभु का नजदीक से तो मैं अपने आप को धन्य मानने लगूंगा। तो इस प्रकार से राजा बहुत उत्कंठित है। राजा भिखारी भी बनने के लिए तैयार है यदि आपकी कृपा उनके ऊपर नहीं होती है तो। महाप्रभु का मन निवेदन सुन के द्रवित हो जाता है, लेकिन महाप्रभु बहुत ही कठोर वचनों में उन्हें कहते हैं सारे भक्तों को, लग रहा है शायद आप सब लोगों ने ठानी लिया है कि मुझे राजा की राजधानी कटक में लेके ही जाएंगे और मिलवा कर ही रहेंगे। जरा सोचो लोग क्या कहेंगे, लोग मेरी निंदा करेंगे कि एक सन्यासी होकर के एक राजा को मिल रहा है, ऐसा कैसे संभव है। और लोग तो छोड़ दो, मेरा दामोदर ये मेरी भर्त्सना करेगा, ये हमेशा मुझे डांटता रहता है। तो यदि दामोदर कहे तो मैं मिलने के लिए तैयार हूं राजा से। तो फिर सब लोग दामोदर की तरफ देखते हैं। दामोदर महाप्रभु से कहता है, महाप्रभु आप तो स्वतंत्र ईश्वर है, आप किसी की इच्छा के ऊपर कार्य नहीं करते हैं, आप जो चाहिए वो कर सकते हैं, राजा के प्रति आपका स्नेह है और स्नेह के कारण आप वश में आ सकते हैं, भविष्य में जरूर आपकी कृपा राजा को मिलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर नित्यानंद प्रभु बोल उठते हैं कि तीनों लोक में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको राजा से मिलने के लिए विनती करे, ऐसा कोई नहीं होगा। और जो अनुरागी लोग होते हैं, जो प्रेमी लोग होते हैं, अपनी इष्ट प्रेम वस्तु जब वो नहीं पाते हैं तब वो अपना प्राण भी न्योछावर करने के लिए सदैव तत्पर होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस प्रकार से राजा जो है वो अपने प्राण भी देने के लिए तैयार है, भिखारी बनने के लिए तैयार है। हमें कुछ युक्ति करनी होगी जिससे महाप्रभु आपको राजा को मिलने भी नहीं जाना होगा और राजा के प्राण भी बच जाए, ऐसा हमें कुछ जो है वो योजना बनानी होगी। महाप्रभु से विनती करते हुए नित्यानंद प्रभु कहते हैं, एक बहिर्वास यदि देह कृपा करी तहां पा प्राण रखे तो मार आशा धरी। कि यदि आप कुछ अपना बाह्य वस्त्र एखादा कपड़ा वगैरह दे देंगे तो फिर राजा को आशा रह जाएगी और राजा उस कपड़े को संभाल के आपकी याद में अगला जीवन बिता सकता है, तो कृपया ऐसा एक वस्त्र दे दीजिए। महाप्रभु कहते हैं कि आप तो सब विद्वत जन हो, आप जो कहे वो हो जाए। और फिर नित्यानंद प्रभु खुशी से गोविंद को कहते हैं कि जाओ जरा वस्त्र लेके आओ। गोविंद महाप्रभु के निजी सेवक जाके तुरंत एक वस्त्र लेके आके नित्यानंद प्रभु के हाथ में देते हैं। नित्यानंद प्रभु वही वस्त्र सार्वभौम भट्टाचार्य को दे देते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य वो वस्त्र राजा तक पहुंचाते हैं। जैसे ही राजा को जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु का ये बहिर्वस्त्र मिल जाता है, राजा बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। वस्त्र पा राजा रहिल आनंदित मन, प्रभु रूप करी करे वस्त्र पूजन। राजा इतना आनंदित हो जाता है महाप्रभु से जब ये वस्त्र पाता है, मानो वो उस वस्त्र की इस प्रकार से पूजा करना प्रारंभ कर देता है, मानो स्वयं प्रभु उनकी वो सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें भी भगवान और भगवान का तदीय, भगवान के वस्त्र माला आदि, इनको भगवान से अलग नहीं समझना चाहिए। पुराण में श्लोक आता है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। सारे आराधनाओं में श्रेष्ठ है विष्णु आराधना, विष्णु की आराधना सब 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 आराधनाओं में श्रेष्ठ है। लेकिन शिवजी पार्वती से कहते हैं कि तस्मात परतरम देवी, उससे भी विष्णु आराधना से भी श्रेष्ठ है तदीया नाम समर्चनम, जो भगवान का तदीय है उनकी सेवा करना। तदीय का अर्थ होता है भगवान से संबंधित सारी वस्तुएं। तो इस प्रकार से हमें भगवान से संबंधित सारी वस्तुओं को भी भगवान जैसा ही आदर प्रदान करना चाहिए जैसा राजा प्रताप रुद्र यहाँ पर दे रहे थे। और जैसा हमने कल देखा कि रामानंद राय वो भी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए अभी वो विद्यानगर से आए थे, तो जब वो आए थे तब वो सबसे पहले जब राजा को मिले तो राजा से उन्होंने अनुमति मांगी थी कि मुझे महाप्रभु के साथ रहना है, और राजा ने आनंदित होकर के उन्हें अनुमति दी थी और ये भी कहा था साथ में कि मेरे लिए भी थोड़ी विनती करना महाप्रभु से कि कभी ना कभी तो मेरे ऊपर भी उनकी कृपा दृष्टि बरसे। और फिर रामानंद राय जब महाप्रभु के पास आए थे तो रामानंद राय हमेशा गुणगान करते रहते थे कि राजा ने मेरे लिए ये किया है, मैं विद्यानगर में नौकरी कर रहा था, वहाँ से छुटकारा प्राप्त हो के मुझे आपका संग मिला है, उसमें राजा का ही काफ़ी बड़ा योगदान है, मेरी तनख्वाह भी चालू है और मुझे नौकरी के लिए भी जाने की आवश्यकता नहीं है, पेंशन के रूप में मुझे तनख्वाह मिल रही है, कितना महान राजा है, कितना बड़ा राजा है। इस प्रकार से राजा का गुणगान गुणगान कर करके महाप्रभु के मन में राजा के प्रति प्रेम जागृत कराने का कार्य रामानंद राय कर रहे थे। राजमंत्री रामानंद व्यवहारे निपुण, राज प्रति कही द्रवा इला प्रभुर मन। क्योंकि वो राजमंत्री थे रामानंद, इसलिए व्यवहार में निपुण थे, वो जानते थे कि किस प्रकार से व्यवहार किया जाएगा तो प्रीति उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार से राजा प्रीति कही, राजा की आपके प्रति कितनी प्रीति है, भक्तों की कितनी प्रीति है, ऐसा कह कहकर द्रवाइल प्रभुर मन, महाप्रभु के मन को उन्होंने द्रवित कर दिया था। तो इसी प्रकार से हम यदि भक्तों से निवेदन करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें भगवान से, या वरिष्ठ भक्तों से हमारे लिए प्रार्थना करें, तो इस प्रकार से भगवान का भी मन द्रवित करने की क्षमता रखते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। इसलिए जो हम लोग भक्तों की संगति को इतना महत्व देते हैं, वो महत्व यहाँ पर भी उसी मात्रा में प्रकट हो जाता है। आखिर में जब राजा प्रताप रुद्र को जो कृपा मिलेगी, वो केवल और केवल भक्तों के कृपा के कारण ही महाप्रभु की कृपा राजा को आगे चल के मिलेंगी, हम जो देखेंगे। रामानंद राय कहते हैं महाप्रभु से, महाप्रभु कम से कम एक बार तो राजा को आपका दर्शन दीजिए, वो मिलने की इतनी अभिलाषा रख रहा है। महाप्रभु कहते हैं कि इहलोक में भी मेरी ख्याति चली जाएगी, परलोक में भी मुझे कुछ अच्छी ख्याति नहीं मिलेगी, लोग क्या कहेंगे जरा सोचो। रामानंद राय कहते हैं कि आप तो परम नियंता परमेश्वर हो, आपको लोगों लोग क्या कहेंगे ये सोचने की कुछ आवश्यकता नहीं है। महाप्रभु कहते हैं कि अरे ईश्वर छोड़ो, मैं तो एक साधारण मनुष्य और एक साधारण सन्यासी हूँ, और सन्यासी लोगों को तो और भी अच्छे से उनका बर्ताव करना चाहिए। शुक्ल वस्त्रे मसी बिंदु ये छे न लोकाय, सन्यासी र अल्प छिद्र सर्वलोक गाय। शुक्ल वस्त्र, सफेद वस्त्र में जिस प्रकार से साई की एक बूंद भी गिर जाती है तो वो उठ के दिखता है, उसी प्रकार से सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोक गाय। सन्यासी ब्रह्मचारी विरक्त व्यक्ति यदि कोई दुष्कर्म करता है, बुरा कार्य करता है, तो सारा संसार उसको बड़ा चढ़ा के उसको गाना प्रारंभ कर देता है। ये महाप्रभु सारे विरक्तों को यहाँ पर जो है वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। रामानंद राय कहते हैं महाप्रभु आपने कई सारे पापियों का अभी तक उद्धार किया है, जगाई मधाई इनको भी आपने कृपा दी है, ये राजा का आप उद्धार क्यों नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं देखो इतने बड़े पात्र में यदि दूध रखा जाए और उसमें यदि सर्प विषैले सर्प का केवल एक बूंद विष भी यदि डाला जाए तो सारा पात्र बेकार हो जाता है, विष में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से राजा में कई सारे गुण होंगे लेकिन फिर भी एक जो दुर्गुण है वो है नाम राजा। जो राजा नाम है वो इतना बड़ा दुर्गुण है कि उससे सारे गुणों को जो है वो ढका जा रहा है। एक कार्य किया जा सकता है, महाप्रभु स्वयं कहते हैं उसको नहीं, उसके पुत्र को यहाँ पर लेके आओ। नित्यानंद प्रभु तुरंत राजा प्रताप रुद्र के पुत्र को बुलाते हैं और राजा के पुत्र की सुंदरता का वर्णन कविराज गोस्वामी कहते हैं कि किस प्रकार से पीताम्बर वस्त्र परिधान किए थे और श्यामल उनका वर्ण था, मानो कृष्ण की भांति उनकी सुंदरता प्रकाशित हो रही थी। जैसे महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र के लड़के को देखते हैं तुरंत भागते जाते हैं और उसे आलिंगन देते हैं और प्रेमाश्रुओं से उसका सिंचन कर देते हैं, अभिषेक कर देते हैं मानो, और राजा का पुत्र वहीं पर ही कृष्ण प्रेम के प्राप्त होके उन्मत्त होके वो प्रेमावेश में नृत्य करने लगता है और वहीं पे मूर्छित गिरता है और प्रेमावेश के सारे लक्षण प्रस्तुत करता है। और महाप्रभु कहते हैं इस प्रकार से उसे कि आप हर रोज यहाँ पर मुझे मिलने के लिए आया करना। और भूरी भूरी कृपा राजा प्रताप रुद्र के पुत्र पर महाप्रभु बरसाते हैं। नित्यानंद प्रभु उस पुत्र को लेके राजा के पास चले जाते हैं। सारा वृत्तांत जब राजा सुनता है तो राजा बहुत ही प्रसन्न और सुखी हो जाता है कि महाप्रभु ने कम से कम मेरे पुत्र के ऊपर तो कृपा दी है। राजा अपने पुत्र को उसी प्रकार से आलिंगन करता है मानो महाप्रभु को वो अभी आलिंगन कर रहा है। तो इतना आदर राजा के मन में महाप्रभु के प्रति जो है वो था। तो इस प्रकार से राजा प्रताप रुद्र के पुत्र के ऊपर महाप्रभु की कृपा होती है। अगले दिन महाप्रभु तीन भक्तों को बुलाते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य, काशी मिश्र और मंदिर के अधिकारी, और इनको बोल के कहते हैं कि अभी हम लोग रथयात्रा से पूर्व गुंडीचा मंदिर इसकी साफ सफाई करेंगे और ये सेवा की मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। जो अधिकारी थे वो अधिकारी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि राजा ने हमें आज्ञा दी है कि जो भी महाप्रभु की इच्छा हो वो आप तुरंत पूरी करना, और इस प्रकार से आप जो भी कहेंगे हम करने के लिए सदैव तत्पर है, आप केवल आज्ञा दीजिए। और महाप्रभु का मन जानते हुए आज्ञा पाने से पहले ही नूतन एक शत घट शत सम्मार्जनी परीक्षा आनिया दिल प्रभुर इच्छा जानी। महाप्रभु की इच्छा जानकर ही परीक्षा का अर्थ होता है अध्यक्ष, जो मंदिर का अध्यक्ष थे वो नूतन एक शत घट मतलब 100 बड़े बड़े बर्तन घट लाके दिए थे, बड़े बर्तन जिसमें पानी रखा जाए, और 100 सम्मार्जनी शत सम्मार्जनी 100 झाड़ू लाके रख दिए महाप्रभु की केवल इच्छा जानकर ही। तो इस प्रकार से जब रखे गए, दूसरे दिन महाप्रभु ने सारे भक्तों को एकत्रित किया, सारे भक्तों का स्वागत किया, स्वयं के हाथों से महाप्रभु ने सबको चंदन लगाया और माला पहनाई। जैसा हम लोग देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में हम लोग सब कुछ सीख सकते हैं, चैतन्य चरितामृत से हम लोग सिद्धांत सीख सकते हैं, राधा कृष्ण का तत्व सीख सकते हैं, चैतन्य चरितामृत में हम लोग वैष्णव सदाचार वो भी सीख सकते हैं कि वैष्णव के साथ हमारा बर्ताव कैसे होना चाहिए। महाप्रभु स्वयं अपनी आचार्य भक्ति अपनी शिखाइनो स्वयं आचरण कर रहे थे और स्वयं सिखाते। कल भी जैसे हमने देखा कि महाप्रभु स्वयं सारे भक्तों को माला पहनाते थे, श्री हस्ते कराए माला चंदन, चंदन लगा रहे थे और स्वयं अपने हाथों से मालाएं पहना रहे थे भक्तों को। तो इसी प्रकार से महाप्रभु सुबह सुबह सारे भक्तों को बुलाकर उन्हें माला पहना रहे थे, स्वागत कर रहे थे, चंदन लगा रहे थे, और महाप्रभु प्रस्ताव रखते हैं कि आज हम मंदिर का मार्जन करने जा रहे हैं और सारे भक्तों को माला के साथ साथ एक एक झाड़ू भी हाथ में थमा देते हैं सेवा करने के लिए। और इस प्रकार से गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा शिल प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जिन भक्तों को पता नहीं है, गुंडीचा नाम की एक रानी थी राजा इंद्रदुम्न की पत्नी, उनके याद में वो मंदिर बनाया गया है और वो वृंदावन का प्रतीक है। जब रथ यात्रा होती है तब जगन्नाथ नीलाचल धाम से नीलाचल धाम में जगन्नाथ जी का रथ गुंडीचा मंदिर जो कि लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है वहाँ पर लेके जाया जाता है और 7 दिन तक भगवान वहीं पर रहते हैं, सप्ताह तक लगभग, और उसके पश्चात जो है वो पुनः रथ यात्रा प्रति वापस की जो लौटती हुई रथ यात्रा आती है वापस जगन्नाथ जी जो है वो अपने मंदिर में स्थापित हो जाते हैं। तो ये गुंडीचा मंदिर क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी वहाँ पर आके निवास करेंगे इसलिए सारे भक्त उसकी साफ सफाई करते हैं और उसकी प्रथा जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु ने ही प्रारंभ की। और महाप्रभु सारे भक्तों को इस प्रकार से गुंडीचा मंदिर लेके जाते हैं और वहाँ पर जो है वो सम्मार्जन प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से वो छत से प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले झाड़ुओं के लेके छत साफ सफाई किए गए, फिर दीवारें साफ सफाई उनकी की जाती है, फिर सिंहासन जहाँ पर भगवान विराजमान होंगे, सभा मंडप, कीर्तन मंडप, इन सब को जो है वो साफ सफाई प्रारंभ हो जाती है। चारिदिक के शत भक्त सम्मार्जनी करे अपनी शोधे ने प्रभु शिखा न सबारे। चारों दिशाओं में सारे भक्त फैले हुए हैं और महाप्रभु भी स्वयं अपने हाथ में अपनी शोधे ने प्रभु शिखा न सबारे स्वयं अपने हाथों से साफ सफाई कर रहे और सारे भक्तों को दिखा रहे, सिखा रहे कि किस प्रकार से साफ सफाई होती है। आजकल मैनेजमेंट सर्कल में एक बहुत चर्चा होती है सर्वेंट लीडरशिप कि किस प्रकार से जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति है उन्होंने सबसे पहले कार्य प्रारंभ करना चाहिए। मेरे एक मित्र ने मुझे एक सही घटना जो हुई थी वो उसमें बता रहे थे कि एक बार बारिश के महीने में चार पांच लोग, उसमें ड्राइवर कंपनी का मालिक और उनके कुछ अधिकारी वर्ग, वो जा रहे थे और अचानक रास्ते में जब गाड़ी पंचर हो जाती है तब ड्राइवर कहता है कि आप, हमें थोड़ा समय रुकना होगा। तो सारे जो अधिकारी लोग थे वो जाते हैं, कई थैले पे एकत्रित होते हैं और ड्राइवर जो वो गाड़ी का पंचर निकालने में व्यस्त था। और इस प्रकार से वो जो सब अधिकारी देखते हैं कि तो उन्हें कंपनी का मालिक दिखाई नहीं रहते, और जब बाद में देखते हैं तो जो मालिक है वो ड्राइवर के साथ गाड़ी के पंचर निकालने में मदद कर रहे थे, और ये व्यक्ति दूसरे तीसरे कोई नहीं लेकिन रतन टाटा थे। तो इस प्रकार से स्वयं होके सेवा करना, ये एक सर्वेंट लीडरशिप, ये नेतृत्व की कला महाप्रभु यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं। अपनी शोधे न प्रभु सिखाएं सबारे, सबको सिखा रहे थे कि किस प्रकार से जो है वो हमें सम्मार्जन करना है और मंदिर की साफ सफाई करनी है। लेकिन साफ सफाई में तो वो लगे हुए ही थे, लेकिन उसके साथ साथ और एक कार्य वो कर रहे थे। प्रेमोल्ला से शोधेन लयन कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। प्रेमोल्लास में वो मग्न है और लयन कृष्ण नाम, सारे लोग कृष्ण कृष्ण का नाम साथ में ले रहे थे। भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम, अपना कार्य करते हुए भी वो भगवान का नाम ले रहे थे। तो ये शिक्षा हम भी ले सकते हैं कि जो भी कुछ कार्य हम लोग दिन भर हमारा करें, उसके साथ साथ यदि भगवान का नाम यदि हम लोग जोड़ दें तो वो कार्य सफल बन सकता है। माता यशोदा भी श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के नौवें अध्याय में दामोदर लीला जिसमें वर्णन आता है, जब वो मंथन कर रही थी तो मंथन यानी यानी हगीतानी तद्बाल चरितानी च दधि निर्मंथने काले तान स्मरन्ति अन्य गायत। जब माता यशोदा मंथन कर रही थी माखन का, दधि निर्मंथने काले दधि का निर्मंथन कर रही थी, यानी यानी ह गीतानि तद बाल चरितानि च, भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरन्ति तान्य गायत, उनका स्मरण कर रही थी और अपने मुख से उसका गान कर रही थी। तो उसी प्रकार से महाप्रभु और उनके सारे भक्तगण कृष्ण का नाम लेते हुए जो है वो साफ सफाई के कार्य में लगे हुए थे। भगवान कृष्ण ने यही आज्ञा भगवद्गीता के आठवें अध्याय में अर्जुन को दी थी, माम अनुस्मर युद्धच, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। तो उसी प्रकार से सम्मार्जन चल रहा था, धूल उड़ रही थी और वो धूली धूसर शरीर महाप्रभु का अत्यंत शोभायमान हो रहा था। धूली धूसर तनु देखिते शोभन, कहाँ कहाँ अश्रुजले करे सम्मार्जन। धूली धूसर सारी धूल महाप्रभु के शरीर के ऊपर गौर कांति उसके ऊपर और अधिक शोभा दे रही थी, और कहीं कहीं तो महाप्रभु प्रेमोल्लास में उनके अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, और कहीं कहीं साफ सफाई में वो अश्रु भी मानो योगदान दे रहे थे साफ सफाई के कार्य में। इस प्रकार से साफ सफाई चलते हुए सारा भोग मंदिर, वहां पर सारे तिनके, सारे धूली के कण और वालू के कण सारे एक वस्त्र में बांधकर महाप्रभु बाहर जाके कचरे के ढीक बना रहे थे। और जब सारे भक्त देख रहे थे, सारे भक्त भी अपने अपने वस्त्रों में जो है वो धूली के कण वालू और तिनके सारे एकत्रित करके वहां पर डाल के आ रहे थे। और महाप्रभु सारे भक्तों को कहते हैं, प्रभु कहे के कत करी अच्छे सम्मार्जन, तृण धूल देखी ले जानीब परिश्रम। किस भक्त ने कितना धूली का ढीक इकट्ठा किया हुआ है उससे समझ में आएगा कि किस भक्त ने कितना परिश्रम किया है। तो महाप्रभु इस प्रकार से सारे भक्तों के बीच में एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन जो है वो लगा रहे थे, किसका धूलि का ढीक कितना बड़ा है चलो वो देखते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी भी जब थे उस समय सारे भक्त पुस्तक वितरण का स्कोर अनाउंस किया करते थे, और श्रील प्रभुपाद जी प्रसन्न हुआ करते थे कि किस प्रकार से इस मंदिर ने इतने ग्रंथ वितरित किए, इस मंदिर ने इतने ग्रंथ वितरित किए। तो इस प्रकार से जो है वो भक्तों के समूह में ये एक स्पर्धा होती थी, लेकिन ये स्पर्धा इसलिए नहीं कि दूसरों को कम दिखाना है, स्पर्धा इसलिए कि हमें और अधिक सेवा करनी है। इस प्रकार से एक स्पर्धा रूपी वातावरण वहां पर महाप्रभु करते हैं कि देखते हैं कौन कितना भक्त परिश्रम कर रहा है, वो उसका जो ढेर जमा हुआ है उससे हमें समझ में आएगा। और महाप्रभु का स्वयं का ढेर कितना हुआ था, सबर झटन भुजा एकत्र करीला सब है ते प्रभुर बोझा अधिक होइला। सारे भक्तों का जो ढेर है वो एक तरफ था और महाप्रभु का ढेर एक तरफ था, तो इतना मेहनत कर रहे थे महाप्रभु और इतनी मेहनत कर करके जो है वो उनका ढेर जो है वो इतना बड़ा था सारे भक्तों की, जो तिनका और जो धूल थी उस ढेर की तुलना में। इस प्रकार से महाप्रभु अभी सारे भक्तों को सरा सम्मार्जन होने के बाद अलग अलग भक्तों को अलग अलग विभाग देते हैं और कहते हैं कि आप जगन्नाथ मंडप में जाइए, किसी को किचन में भेज दिया, किसी को सभा मंडप में, किसी को सिंहासन के यहाँ पे, और कहे कि अभी दोबारा सफाई प्रारंभ करो, फिर बचे हुए तिनके बची हुई बारीक बारीक धूल सारी जो है वो एकत्र कर दी। और उसी दौरान सारे भक्त जो घट लाए हुए थे नए 100 घट, 100 भक्त एकत्रित होके बगल वाले सरोवर से जो है वो पानी लेके तैयारी थे और आज्ञा की राह देख रहे थे कब महाप्रभु जो है वो पानी लाने के लिए कहेंगे। और फिर महाप्रभु कहते हैं जल लाओ, तो जब जल लाओ कहा गया तो सारे जल के घट भरे हुए लाए गए और इस प्रकार से जल को सबसे पहले छत के ऊपर फेंका गया, फिर उसके पश्चात छत, मंदिर की सारी दीवारें, फर्श, सिंहासन, ये सब को जो है वो जल से धोया गया। और महाप्रभु ने स्वयं सिंहासन को जल से और अपने स्वयं के वस्त्र से इस प्रकार चमका रहे थे महाप्रभु, और वो चमक रहा था। सारे भक्त लेके महाप्रभु को हाथों में जल के घड़े दे रहे थे, और हाथों में जल के घड़े तो दिए ही जा रहे थे, उसके साथ साथ कोई भक्त चोरी छुप कर महाप्रभु के चरणों में भी वो जल समर्पित कर रहे थे, और उसका जो जल हो रहा था सिंचित वो अभिषेक का, वो पानी भी पान कर रहे थे बिना महाप्रभु के जाने, महाप्रभु के पीछे ही। तो इस प्रकार से जो है वो अभिषेक हो रहा था और पानी मानो इस प्रकार से वहां से बह रहा था, कोई नाली बह रही हो, और इस प्रकार से वो नाली बहकर बाहर जा रही थी। और महाप्रभु ने इस प्रकार से अपने वस्त्र से सिंहासन को चमकाया। शतघट जले हईल मंदिर मार्जन मंदिर शोधिया कैल ये न निज मन। इस प्रकार से संपूर्ण मंदिर का सम्मार्जन किया, धो डाला, मानो अपना स्वयं का मन जिस प्रकार से शुद्ध है उसी प्रकार से महाप्रभु ने उस सिंहासन और संपूर्ण मंदिर की शोभा को बढ़ाया था। तो इस प्रकार से सरोवर थोड़ा दूर था, कुछ भक्त कुएं के यहाँ पर जा रहे थे, कुएं से पानी भरकर ला रहे थे, 100 भक्त तो कुएं किस प्रकार से ट्रांसफर उनका आदान प्रदान हो रहा था, इतनी भीड़ हो गई थी भक्तों की, और एक घड़ा मानो दूसरे घड़ों के साथ टकरा रहे थे और टकराए हुए मटके वहां पर फूट रहे थे, और फूटे हुए मटकों को भी दूर किया जा रहा था, और अलग नए बर्तन जो है वो अधिकारियों द्वारा लाए जा रहे थे। इस प्रकार से भीड़ और कोलाहल वहां पर हो रहा था, और एक दूसरे को एक दूसरे की यदि कहना है तो बोलने में आवाज भी नहीं सुनाई देती थी, इस प्रकार का कोलाहल। किसी को कुछ बोलना भी है तो वो केवल कहते थे कृष्ण 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 कही करे घटेर प्रार्थन, कृष्ण कृष्ण कही करे घटेर समर्पण। यदि किसी को घट चाहिए थे, थोड़ा घट दो, जल का घड़ा दो, तो वो कहते थे कृष्ण कृष्ण, और कोई कहता था कि ये घट लो, तो वो कहते थे कृष्ण कृष्ण। इस प्रकार से जो है वो केवल कृष्ण और कृष्ण की ध्वनि वहां पर सुनाई दे रही थी। प्रेमावेश प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, एकले प्रेमावेश करे शत जनेर काम। महाप्रभु प्रेमावेश में आके कृष्ण और कृष्ण का नाम ले रहे थे, लेकिन नाम लेके उन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं था। क्या कर रहे थे? एकले प्रेमावेश करे शत जनेर काम, 100 लोगों का काम अकेले महाप्रभु कर रहे थे। यहाँ पर महाप्रभु शिक्षा दे रहे थे कि प्रेम के आवेश में हमें हमारी सेवा को छोड़ना नहीं है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वो कहते हैं कि वृंदावन में जाके हम लोग भजन करें। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे भक्तों को कहा करते थे वर्क नाउ समाधि लेटर। तो प्रेम के आवेश में भी हमने हमारी सेवा का त्याग नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पर महाप्रभु स्वयं सिखा रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु उसके साथ साथ अपना कार्य कर ही रहे, उसके साथ साथ इर्द गिर्द घूम भी रहे थे कि कौन क्या कर रहा है, उसकी तरफ उनका ध्यान था। यदि कोई भक्त अच्छा काम कर रहा था तो उसकी महाप्रभु सराहना कर रहे थे। भल कर्म देखी तारे करे प्रशंसन, मने ना मिलीले करे पवित्र भर्त्सन। यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता था तो महाप्रभु उसकी प्रशंसा करते थे, और यदि कोई व्यक्ति ठीक से कार्य नहीं करता था, मने ना मिलीले तारे करे भर्त्सन, उसको महाप्रभु डांटते थे कि ये कार्य ठीक नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ये भी एक नेतृत्व की कला हम लोग महाप्रभु से सीख सकते हैं कि किस प्रकार से कोई अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और यदि कोई ठीक से नहीं करते हैं तो उसकी प्रेम से भर्त्सना भी होनी चाहिए। और जो अच्छा कार्य करते थे तो महाप्रभु उसे कहते थे कि बहुत अच्छा, तुम्ही भल करिया छे शिकह अन्य रे, यही मत भल कर्म से हो ये न करे। तुम अच्छा काम कर रहे हो, क्या करो, सिखाई न अन्य रे, दूसरों को जाके भी इसी कार्य को सिखा दो कैसे अच्छा करना चाहिए, ताकि वह व्यक्ति भी अपनी सेवा अच्छे से प्रदान कर पाएगा। श्रील प्रभुपाद जी भी अपने भक्तों को जो अच्छा कार्य करते थे उन्हें कहते थे कि जाके इसे दूसरों को भी सिखाओ, ताकि वो लोग भी इस सेवा को अच्छे से कर सकते हैं। शेयर व्हाट यू आर एक्सपर्ट एट, शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इस प्रकार से हम भी सीख सकते हैं। प्रभुपाद जी ने यमुना माता जी इनको कहा कि आप बहुत अच्छे से खाना बनाती है, इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ, और तो उन्होंने वो कुक बुक लिख दिया, कृष्णाज क्विजिन, और उस पुस्तक के वितरण के माध्यम से कई भक्त जो है वो उसे सीख गए। तो इस प्रकार से जो महाप्रभु सारे भक्तों के साथ वहां पर सम्मार्जन का काम कर रहे थे। कीर्तन मंडप, प्रसाद स्थल, सभा मंडप, प्रांगण, सारे चबूतरे सबको जो है वो धोया गया। फिर धोते धोते एक गौड़ीय वैष्णव वहां पर उपस्थित हो जाता है। हेन काले गौड़िया एक सुबुद्धि सरल, प्रभुर चरण युगे दिल घट जल। धोते धोते महाप्रभु के दोनों चरणों में उसने जो है वो घट जल अर्पण कर दिया, महाप्रभु के चरणों का सुंदर से अभिषेक कर दिया, और महाप्रभु के नजरों के सामने जब महाप्रभु देखते हैं, महाप्रभु बाह्य दृष्टिकोण से क्रोधित हो जाते हैं। सही जल पा आपने पान कैला, तहां देखी प्रभुर मने दुख रोष हैला। और महाप्रभु के सामने उसकी ये हिम्मत की वो जल को उसने पी भी लिया। महाप्रभु देख के अंदर से तो प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन बाह्य उन्होंने क्रोध जताया, और तुरंत वहां पर स्वरूप दामोदर को बुलाते हैं महाप्रभु, और स्वरूप दामोदर को कहते हैं, ये तुम्हारा बंगाली वैष्णव भगवान के मंदिर में मेरे चरण धोके जल ग्रहण कर रहा है, मेरी क्या गति होगी, मुझे नरक में जाना होगा यदि ऐसा कार्य होगा, तो जरा अपने गौड़ीय वैष्णव को संभालो। तो इस प्रकार से स्वरूप दामोदर वहां पर तुरंत आ जाते हैं, उस भक्त की गर्दन पकड़ के उसे बाहर लेके जाते हैं, और फिर उसे बाहर ही रखते हैं, कहते अंदर मत आना। महाप्रभु देख के संतोष पाते हैं, और इस प्रकार से महाप्रभु भक्तों की दो पंक्तियां बनाते हैं, और जो ढेर उन्होंने बनाए थे वहां सर तिनकों को चुनना वहां पर प्रारंभ करते हैं, और थोड़ी मजा मस्ती करना प्रारंभ करते हैं। केकत कुड़ाई सब एकत्र करीब, यार अल्प तारठाई पीठा पाना लईब। महाप्रभु ने सारे भक्तों की जो कूड़ा करकट थी उसको एकत्रित किया और कहा कि यार अल्प तार, जिसकी कम मात्रा है उस व्यक्ति को दंड देना होगा। दंड क्या होगा, क्या जुर्माना भरना पड़ेगा, पीठा पाना लईब। उस व्यक्ति को जो है पीठा का अर्थ होता है मिठाई, और पाना का अर्थ होता है खीर। उस व्यक्ति को मिठाई और खीर का जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने कम सेवा की है, उसे दंड देना होगा। और इस प्रकार से संपूर्ण मंदिर की साफ सफाई हो जाती है। ऐ मत सब पूरी करिल शोधन, शीतल निर्मल कैल येन निज मन। इस प्रकार से करिल शोधन, संपूर्ण मंदिर का जो है वो शोधन हो जाता है, साफ सफाई हो जाती है, और शीतल और निर्मल किया जाता है सारे मंदिर को, मानो स्वयं के मन को शीतल और निर्मल किया गया है। तो इस प्रकार से मंदिर का मार्जन हमारे हृदय के मंदिर के मार्जन के समान ही हमें देखना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग मंदिर की साफ सफाई करते हैं, क्योंकि भगवान वहां पर अभी आगमन करने वाले हैं, उसी प्रकार से जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, हमें इस प्रकार से सोचना है कि हम लोग हमारे मंदिर का, हमारे हृदय रूपी मंदिर का मार्जन कर रहे हैं और भगवान को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। इस प्रकार से यदि हम लोग जप करते हैं तो इसके द्वारा हमारा हृदय का शुद्धिकरण जो है वो होता है। फिर उसके पश्चात मंदिर की साफ सफाई हो गई। मंदिर के बगल में ही और दूसरा मंदिर है, नरसिंह मंदिर। वहाँ उस नरसिंह मंदिर की भी अच्छे से साफ सफाई करने के पश्चात भक्त विश्राम करते हैं, क्योंकि अभी बहुत थके हुए हैं। विश्राम के पश्चात महाप्रभु कीर्तन और नृत्य प्रारंभ कर देते हैं। और जैसा कि महाप्रभु नृत्य प्रारंभ कर देते हैं, महाप्रभु तुरंत प्रेमावेश में आके कृष्ण के नाम जैसे लेते हैं, उनके आँखों से अश्रु प्रवाहित होते हैं, उनके शरीर कंपन होने लगता है और रोमांचित पुलकित हो जाते हैं, मानो कृष्ण प्रेम में आवेशित हो गए हो। और उस आवेश में महाप्रभु इस प्रकार का नृत्य प्रारंभ करते हैं, महा उच्च संकीर्तने आकाश भरिला प्रभुर उदंड नृत्य भूमि कंप हैला। इस प्रकार से संकीर्तन की ध्वनि प्रारंभ हो जाती है, मानो स्वर्ग भरिला, सारे स्वर्ग तक वो पहुंच जाती है और कंपन करते हैं, उदंड नृत्य भूमि कंप हैला। महाप्रभु के उदंड नृत्य से मानो सारी भूमि अभी कंपन पा रही हो, इस प्रकार से जो है वो नृत्य प्रारंभ हो जाता है। और उसी नृत्य के दौरान महाप्रभु अद्वैताचार्य का पुत्र जिनका नाम था गोपाल, उन्हें आज्ञा देते हैं, गोपाल नाचो। और गोपाल नृत्य करना वहीं पर प्रारंभ कर देता है और महाप्रभु की आज्ञा के कारण वो प्रेमावेश में विवल होकर वहीं पर गिर पड़ता है, मूर्छित पड़ा हुआ गोपाल। जब सारे भक्त अद्वैताचार्य के साथ देखते हैं, सारे भक्त वहां पर चले जाते हैं और अद्वैताचार्य उन्हें अपने गोदी में ले लेते हैं। गोपाल के शरीर के अंदर प्राण ही मानो अभी नहीं है, गोपाल मूर्छित अवस्था में है। सारे भक्त वहां पर नृसिंह आरती गाना प्रारंभ कर देते हैं गोपाल की रक्षा के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, मानो गोपाल अभी गत प्राण हो गए हैं। सारे भक्त वहां पर रुदन करना प्रारंभ कर देते हैं, रोने लगते हैं। और जैसे महाप्रभु तक खबर आती है कि गोपाल मृत प्राय अवस्था में है, महाप्रभु वहां पर जाते हैं और गोपाल के छाती पर हाथ रख के कहते हैं, गोपाल उठो। और जैसे ही ऐसा महाप्रभु का दिव्य स्पर्श पाने के पश्चात गोपाल वहां पर कूद के छलांग लगा के उठते हैं और वहीं पर पुनः नृत्य प्रारंभ कर देते हैं। सारे भक्त हरि ध्वनि हरि हरि कहते हुए जो है वो पुनः नाचने लगते हैं और कीर्तन करने लगते हैं। उसके पश्चात सारे भक्त नाचकर थकने के पश्चात पुनः थोड़ा विश्राम कर लेते हैं और विश्राम के पश्चात सारे भक्त स्नान करने के लिए जाते हैं निकटवर्ती सरोवर में। स्नान करने के पश्चात सारे भक्त आ जाते हैं और नरसिंह देव इनका दर्शन पा लेते हैं। और उसके पश्चात जो बगल में बगीचा था, उस बगीचे में सारे भक्त अभी प्रसाद पाने के लिए बैठ जाते हैं। और सारे भक्त जो अभी प्रसाद पाने के लिए बैठे हैं, और प्रसाद वितरण, प्रसाद की सेवा किसकी है आपको याद है? वाणीनाथ, वाणीनाथ जी ने, जो भवानंद राय इनके पुत्र है और रामानंद राय इनके भाई है, वाणीनाथ ने जगन्नाथ मंदिर से सारे प्रसाद का आयोजन किया हुआ है और सारे भक्तों के लिए अभी प्रसाद परोसा जा रहा है। महाप्रभु चिल्लाते, हरिदास हरिदास कहाँ है तू, आ जाओ प्रसाद के लिए। हरिदास दूर से ही कहते कि महाप्रभु मैं आप सबके साथ भक्त प्रसाद नहीं पा सकता, मैं म्लेच्छ जाति का हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर प्रसाद आप सबके साथ नहीं लूंगा। और फिर हरिदास ठाकुर दूर ही वहीं पर बैठे रहते हैं और सब भक्त अभी प्रसाद पा रहे, स्वरूप दामोदर वाणीनाथ ये सब प्रसाद का वितरण चल रहा है। और महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे मोरे देह लाफरा व्यंजने पीठा पाना अमृत गुटी का देह भक्त गणे। महाप्रभु कहते हैं मुझे केवल लाफरा व्यंजन, लाफरा व्यंजन मतलब सादी तरकारी सब्जियां, वो मुझे केवल दो और सारे मिठाई खीर और जो अमृत के लिए वो सारे भक्तों में बांट दो, मुझे ये सारे व्यंजन नहीं चाहिए, मुझे केवल सादी तरकारी सब्जियां ही दीजिए। और उसके चलते महाप्रभु अभी थोड़े दूसरे भावावेश में जा रहे हैं और महाप्रभु न्योता देते हैं, आमंत्रित करते हैं सार्वम भट्टाचार्य को, सार्वम आओ मेरे बगल में बैठो मेरी पंक्ति में। सार्वम भट्टाचार्य, हमें पता है कि छठे अध्याय में जिनका उद्धार हुआ है अभी वो बहुत बड़े भक्त बने हुए हैं। सार्वम भट्टाचार्य बहुत बड़े पंडित जिन्होंने, याद है आपको, दो श्लोकों की रचना की थी महाप्रभु के गुणगान में, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा और दूसरा भक्त, दूसरा श्लोक जो ताड़पत्र में लिखा था कि किस प्रकार से अभी काला नष्टम भक्ति योगम निजम यह प्रादुष्कर्तुम कृष्ण चैतन्य नामा आविर्भूतस्तप चरणा अरविंदे गाढ़म गाढ़म लियां चित्त भृंगम। तो इस प्रकार से वो सार्वभौम अभी इतने बड़े पंडित और भी बने हुए बड़े भक्त वहां पर महाप्रभु के नजदीक प्रसाद के लिए बैठते हैं और वहीं पर उनके अभी संबंधी गोपीनाथ आचार्य वहां पर आ जाते हैं और गोपीनाथ आचार्य देखते हैं कि क्या वो दिन था जब सार्वभौम भट्टाचार्य एक मायावादी के रूप में प्रचार किया करते थे, उनके संग में रहा करते थे, और आज कौन सा वो दिन है जब जब ये सार्वभौम भट्टाचार्य भक्तों के संग में नृत्य और प्रसाद का आस्वादन ले रहे हैं। कहां भट्टाचार्य पूर्व जड़ व्यवहार, कहां यही परमानंद करह विचार। जरा विचार कीजिए, कहां भट्टाचार्य पूर्व जड़ व्यवहार, कैसा वो जड़ अद्वैतवादी मायावादी दर्शन दे के वो कैसा जड़ व्यवहार हुआ उनका हुआ करता था, और कहां यही परमानंद, अभी वो परमानंद के सागर में डूबे हुए हैं। जरा विचार कीजिए, सार्वभौम भी कहते हैं कि सार्वभौम कहे अमित तार्किक कुबुद्धि तुम्हारे प्रसादे मोर यही संपत सिद्धि। सर्वम कहते कि मैं कैसा था, तार्किक कुबुद्धि, तर्क वितर्क करने वाला और कुबुद्धि मेरी थी, लेकिन अभी आपके संग के कारण जो है वो यही संपत सिद्धि, ये कृष्ण भक्ति की संपत्ति अभी मुझे मिली हुई है। इसी प्रकार से जैसे सार्वम भट्टाचार्य कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे गोपीनाथ आचार्य के प्रति, उसी प्रकार से हमें भी हमारा पूर्व जीवन के बारे में अवलोकन करना चाहिए कि कहां मैं वो कुतर्क करने वाला कैसा कुबुद्धि वाला व्यक्ति था, लेकिन आज कैसे मुझे भक्तों की कृपा से परिवर्तन आ गया है मुझ में और भक्ति के विविध अंगों का मैं आस्वादन कर पा रहा हूं। इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि आपके संगति के कारण और महाप्रभु के कृपा के कारण मैं एक कौवे से अभी एक गरुड़ में परिवर्तित हो गया हूं। तार्किक श्रृगाल संगे भ्यू भ्यू करी सही मुखे एबे सदा कही कृष्ण हरि। तार्किक श्रृगाल संगे, उन तार्किक लोगों के संग में, मानो वो सियारों का संग हो, श्रृगाल संगे भ्यू भ्यू करी, मानो मैं भोंक रहा था, भो भो करके मैं मायावाद सिद्धांत को भोंक रहा था, लेकिन अभी आज क्या हुआ है, सही मुखे एवी सदा बोलो कृष्ण हरि, वही मेरा मुख आज कृष्ण और हरि इनका जो है वो दिव्य नाम ले रहा है। कहां बहिर्मुख तार्किक शिष्यगण संगे कहां यही संग सुधा समुद्र तरंगे। कहां मैं वो तार्किक शिष्यगणों के संग में मैं बर्ताव करता था और कहां यही संग सुधा। गर्मी के दिनों में हम लोग एक औषधि लेते हैं जिसका नाम है शीत सुधा, जो हमें हमारे शरीर को शीतल कर देती है। उसी प्रकार से सार्वभौम कह रहे कि ये अभी मैं हूं ये संग सुधा, इस प्रकार से शीतल भक्तों की संगति में समुद्र तरंगे, समुद्र में मानो संग में मैं अभी गोते खा रहा हूं। और उसी समय जो है वो एक दिव्य अद्वैताचार्य और नित्यानंद इनका भी झगड़ा वहीं पर प्रारंभ हो जाता है, एक दूसरे को वो आलोचना करते हैं, लेकिन जैसे व्याज स्तुति जिस प्रकार से गुणगान ही करना हो तो भी वो एक दूसरे की आलोचना इस प्रकार से करते हैं, लेकिन प्रसाद जब ले रहे हैं, प्रसाद से उठते समय सारे भक्तगण भगवान का नाम लेते हैं। भोजन करी उठे सबे हरि ध्वनि करी, हरि ध्वनि उठिला सब स्वर्गमर्त्य भरी। इस प्रकार से सारे लोग हरि ध्वनि कर रहे हैं और इस हरि ध्वनि से मानो स्वर्ग लोक और सारा पृथ्वी लोक जो है वो आच्छादित हो गया है। प्रसाद के पश्चात, हाथ धोने के पश्चात महाप्रभु स्वयं सारे भक्तों को धन्यवाद देते हुए उन्हें माला पहनाते हैं और पुनः चंदन लगा के उनको धन्यवाद अदा करते हैं। सबके प्रसाद होने के पश्चात गोविंद महाप्रभु का निजी सेवक, महाप्रभु का उच्चिष्ठ और कुछ दूसरा महाप्रसाद जाके हरिदास ठाकुर जहां पर रहने की व्यवस्था की थी महाप्रभु ने, वहां पर जाके उन्हें भी प्रदान करके आते हैं। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु करे नाना खेला, धोया पाखला नामक कैला यही एक लीला। तो इस प्रकार से जो स्वतंत्र ईश्वर प्रभु महाप्रभु स्वतंत्र ईश्वर है, अनेक अनेक खेला कई सारे लीलाएं करते थे, लेकिन धोया पाखला मतलब साफ सफाई करने की मात्र एक लीला जगन्नाथपुरी की मैंने अभी जो है वो वर्णित की है। ऐसी अनंत खेला कई सारी लीलाएं महाप्रभु अपने भक्तों के संग में जगन्नाथपुरी में किया करते थे। और 15 दिन जगन्नाथ जी क्वारंटाइन होने के पश्चात अभी एक महोत्सव होता है जिसका नाम होता है नेत्रोत्सव, जगन्नाथ भगवान का पहला दर्शन। और उस दर्शन के लिए सारे भक्तों को लेके महाप्रभु निकल पड़े हैं। मानो एक मत्त हाथी अपने सब संगियों के साथ जा रहा है, उसी प्रकार से कीर्तन में मदमत्त होकर महाप्रभु जा रहे थे, आगे आगे चल रहे थे महाप्रभु के परमानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती, और अगल बगल में जा रहे थे महाप्रभु के अद्वैत आचार्य और स्वरूप दामोदर, इनके संग में महाप्रभु जा रहे हैं। और महाप्रभु क्योंकि अभी 14 दिन तक दर्शन नहीं हुआ है, दर्शन के लिए इतने उत्सुक और इतने व्याकुल, तुरुषार्थ प्रभुर नेत्र भ्रमर युगल गाढ़ तृष्णाय पिए कृष्णेर वदन कमल। कितनी सुंदर यहां पर रचना करते कविराज गोस्वामी, तुरुषार्थ प्रभुर नेत्र भ्रमर युगल, महाप्रभु के नेत्र तुरुषार्थ है, उत्सुक है दर्शन पाने के लिए। और ये दो युगल, युगल का अर्थ होता है ये दो नेत्र, मानो एक भ्रमर, एक मधुमक्खी एक भौरे के समान है। और ये दो नेत्र क्या कर रहे हैं, गाढ़ तृष्णाए पिए कृष्णेर वदन कमल, और ये पान कर रहे हैं, मानो कोई भौरा भूखा भौरा यदि फूल के संग में आ जाए तो किस प्रकार से वो पान करेगा पिएगा, उसी प्रकार से महाप्रभु के दो नेत्र मानो भगवान की सुंदरता का पान कर रहे थे। तो इस प्रकार का पान जो है वो हमें भी करना चाहिए, हम भी जब भगवान के सामने आ जाते हैं इस प्रकार से तुरुषार्थ नेत्र रख कर मानो ये पान कर रहे हैं, इस प्रकार से पान करना चाहिए। और हमारे कर्णों के द्वारा भगवान की कथा का भी पान करना चाहिए, पिबंती ये भगवत आत्मनः सतम कथा मृतम श्रवण पुटेषु संमृतम। भागवत कहता है, श्रीमद भागवत में कहा गया है कि पिबंती कर्णों के द्वारा हमने पीना चाहिए कथामृतम, तो कथा रूपी अमृत कारणों के द्वारा पिया जाता है, भगवान का श्रृंगार रूपी अमृत जो है वो नेत्रह पिबंती, गोपियों के बारे में भी वर्णन श्रीमद् भागवत करता है कि आंखों के द्वारा महाप्रभु इस प्रकार से पान कर रहे थे। और जैसे ही पान कर रहे थे भगवान की सुंदरता और बढ़ रही थी, क्योंकि महाप्रभु भाव में थे श्रीमती राधारानी के, और जब कृष्ण राधारानी को देखते तो कृष्ण का सौंदर्य और बढ़ता है, उस प्रकार से जगन्नाथ जी जब महाप्रभु को देख रहे थे जगन्नाथ जी का भी सौंदर्य और बढ़ रहा था, और सारे भक्त इस लीला का आस्वादन कर रहे थे। श्रीमुख सुंदर कांति बाड़े क्षणे क्षणे कोटि भक्त नेत्र भृंग करे मधु पाने। इस प्रकार से जगन्नाथ जी की सुंदरता भी बढ़ रही थी, बाड़े क्षणे क्षणे कोटि भक्त नेत्र भृंग, सारे भक्तों के जो नेत्र भृंग है वो क्या कर रहे थे, करे मधु पाने, मधु का आस्वादन कर रहे थे, भगवान की सुंदरता जो है वो उसको निखार रहे थे। तो इस प्रकार से कविराज गोस्वामी ने बहुत सुंदर तरीके से गुंडीचा मंदिर इस मार्जन इस लीला का वर्णन यहाँ पर किया है। और वो कहते हैं कि ये मैंने केवल संक्षेप में कहा है, विस्तार में और ये लीला बहुत बड़ी हो सकती है। और वो हमें जो हम सब लोग सुन रहे उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहते हैं, गुंडीचा मार्जन लीला संक्षेपे कहिला, यहां देखी शुनी पापीर कृष्ण भक्ति होइला। गुंडीचा मार्जन लीला संक्षेपे कहिला, मैंने ये गुंडीचा मार्जन की लीला संक्षेप में कही है, और यहां देखी सुनी जिस व्यक्ति ने उसे देखा है, आप लोगों ने इतना सुंदर जब वर्णन सुना आपको लगा होगा काश मैं भी उस लीला में सम्मिलित होता, तो कविराज गोस्वामी कहते देखी सुनी जिसने देखा और जिसने सुना, कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, देखी सुनी पापीर कृष्ण भक्ति हैला, उस व्यक्ति को कितना भी पापी क्यों न हो उसे कृष्ण भक्ति जरूर मिलेगी। और इस प्रकार से हमें भी कृष्ण भक्ति जरूर मिलेगी, क्योंकि कविराज गोस्वामी का आशीर्वाद हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। हम आपको ले चलते हैं अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 1 जिसमें संपूर्ण लीला का आस्वादन कविराज गोस्वामी हमें एक श्लोक में करा रहे हैं, अध्याय 12 का श्लोक क्रमांक 1। श्री गुंडीचा मंदिरम आत्मवृंदये सम्मार्जयन क्षालयनतः स गौरः स्वचित्त वच्छी तलमुज्ज्वलं च कृष्णोपवेश औपैकं चकार। श्री गुंडीचा मंदिरम आत्मवृंदये, आत्मवृंदये अपने सारे भक्तों के साथ लेके गुंडीचा मंदिर में क्या किया? सम्मार्जयन क्षालयन स गौरः, उन गौरांग महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ गुंडीचा मंदिर का जो है वो धोया और साफ किया। किस प्रकार से साफ किया? मानो स्वचित्तवत शीतलम उज्ज्वलम च, मानो अपने चित्त के समान शीतल और उज्ज्वल किया। और कृष्ण उपवेश औपैकम, भगवान कृष्ण को बैठने के लिए एक उपयुक्त स्थान उन्होंने वहां पर बनाया। ऐसा ये महाप्रभु का दिव्य लीला। उसी प्रकार से हमें भी हमारा हृदय, हमारा चित्त, महाप्रभु ने जिस प्रकार से अपने चित्त के समान हृदय का जो चित्त है उस प्रकार से शीतल और उज्ज्वल मंदिर को बना के साफ किया, उसी प्रकार से हमें भी हमारा चित्त शीतल और उज्ज्वल बनाने के लिए ऐसे दिव्य लीलाओं को सुनना चाहिए और भगवान के दिव्य नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप नित्य रूप से करना चाहिए, ताकि हमारा भी हृदय भगवान के प्राकट्य के लिए एक उपाय उपाय उप उपवेश औपायिकम बैठने के लिए योग्य बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री कवि कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाह रहे हैं। 25 मार्च को मोदी जी ने अनाउंस किया था कि 21 दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा, और उस लॉकडाउन को चलते हमने इस चैतन्य चरितामृत की श्रृंखला को प्रारंभ किया था, और उसी में हमने एक कंटेस्ट का आयोजन किया था, चैतन्य चरितामृत कंटेस्ट। विश्व भर से प्रतिसाद इतना अच्छा मिला। परसों एक चाइना के भक्त, उन्होंने भी इसके लिए जो है वो रजिस्टर किया हुआ है, तो काफ़ी भक्तों को लेट पता चला कि ये कंटेस्ट हो रही है, इसलिए वो परीक्षा की तिथि आगे करने के लिए कह रहे थे। तो इस प्रकार से विदेशी भक्तों के लिए हम एक दूसरी तारीख निर्धारित किए थे, और लोकल हमारे स्थानीय भक्तों के लिए 14 अप्रैल, क्योंकि उस समय फिर हमारा लॉकडाउन हटने वाला था, लेकिन अभी ऐसी वार्ताएं आ रही है कि ये लॉकडाउन और आगे तक भी जो है वो चलने वाला है, तो लॉकडाउन तो चलता रहेगा, तो काफ़ी भक्तों को इसका अध्ययन करने के लिए और समय भी चाहिए था, और विदेशी भक्तों की तो हमने दूसरी तारीख निर्धारित की थी, और सारे भक्तों का सुझाव भी आज जब हमने लिया तो बहुत सारे भक्त कह रहे थे कि परीक्षा जो है वो आगे की जाए। कुछ भक्त हैं वो कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी निपटा के परीक्षा दे लो, ताकि हम लोग दूसरे ग्रंथों का अध्ययन भी कर सके, लेकिन हम लोग जो है वो मेजॉरिटी ज़्यादा भक्तों का कहना है कि ये परीक्षा आगे की जाए। तो हमने इसकी तारीख की है, आप नोट करके रखिए, 3 मई 2020, 3 मई 2020, उस दिन रविवार भी है, क्योंकि काफ़ी भक्तों का कहना है कि उस समय हमारा कार्यकलाप चालू हो जाएंगे, तो उस समय रविवार अच्छा रहेगा, इसलिए रविवार को हम लोग ये लेंगे ऑनलाइन कॉन्टेस्ट। शाम को 6 से लेके 7 बजे तक ये चलेगी, और ये क्योंकि ऑनलाइन है तो उसके लिए आपको एक तो आपका मोबाइल जिसमें इंटरनेट है, स्मार्टफोन, या फिर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसमें आप इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन ये परीक्षा दे सकते हैं। ऐसे कुछ भक्त हैं जिन्हें इंटरनेट और कंप्यूटर का प्रयोग करना नहीं आता, वो दूसरों की मदद के द्वारा इस ऑनलाइन परीक्षा को दे सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा ऑफलाइन लेना हमारे लिए अभी संभव नहीं है। जैसा हमने KBC लिया था, उस समय क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करना और सारे भक्तों को एकत्रित लाना ये संभव नहीं है इस लॉकडाउन पीरियड में। लॉकडाउन पीरियड उड़ भी जाएगा तो भी ये तुरंत संभव नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड शायद 30 अप्रैल तक महाराष्ट्र में बढ़ने वाला है, तो उसके चलते हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि तीन मई को यह परीक्षा रविवार के दिन शाम को 6 से 7 बजे तक ऑनलाइन ली जाएगी। यदि अभी भी किसी को इस परीक्षा में भाग लेना है तो अभी समय काफ़ी है। ऐसी केवल 2 किताबें और केवल श्लोक और अनुवाद आपको पढ़ना है, तो ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। आप बार बार भी उसे पढ़ सकते हैं और इस परीक्षा की तैयारी कीजिए। और एक हम चाहते हैं, कुछ भक्तों के सुझाव ऐसे हैं कि इस प्रकार से मध्यलीला की भी परीक्षा जो है वो उसका आयोजन किया जाए। तो मध्यलीला में ऐसे 5 किताबें हैं, तो आदिलीला की केवल ऐसे 2 किताबें हैं, मध्यलीला की 5 किताबें हैं। तो 5 किताबों को केवल श्लोक और अनुवाद यदि आपको पढ़ना है तो 1-1.5 महीना काफ़ी हो जाएगा। और अभी तो हमारे मध्यलीला के क्लासेस चल ही रहे हैं, तो आप आशा है कि आप मध्यलीला का भी अध्ययन रखे हुए हैं जारी। तो मध्यलीला अभी से आप पढ़ते रहिए। संपूर्ण मई महीने के पश्चात फिर हम लोग जून महीने में, आप आपके सुझाव दे सकते हैं कमेंट्स में कि कब ये एग्ज़ाम रखना उचित होगा। तो जून महीने के मध्य में या आखिर में मध्यलीला की भी हम लोग जो है वो परीक्षा का आयोजन कर सकते हैं। यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो हम लोग वो भी रखने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय।